ओम शांति। मेरे प्यारे प्यारे भाई और बहनों, हम सुन रहे थे अंतिम उड़ान के लिए तैयारी। ब्रह्मा बाबा हम सभी के लिए रोल मॉडल हैं। हमारे जैसे होते हुए भी बाबा पुरुषार्थ कर संपन्न बने, संपूर्ण बने, फरिश्ता बन हम सभी के सामने ही उड़ गए। हमें भी अगर चलना है तो बाप समान फॉलो फादर कर संपन्न और संपूर्ण बनना पड़ेगा। ब्रह्मा बाबा की जीवन की एक विशेषता रही जिसके कारण वह संपन्न और संपूर्ण बन गए, वो विशेषता है ब्रह्मा बाबा शुरू से लेकर अंत तक आज्ञाकारी रहे। शिव बाबा ने जो कहा, जी बाबा, जी बाबा, तो बाबा की हर श्रीमत जीवन में धारण किए, अनुकरण किए, इसके कारण संपन्न और संपूर्ण बने। बाबा संपूर्ण बनने का जो जीवन का पहला परिवर्तन का पहला फाउंडेशन था, नंबर वन फाउंडेशन था, वो है बेहद की वैराग्य वृत्ति। और इसके बाद बाबा का दूसरा कदम था संपूर्ण त्याग, सर्वस्व त्याग, सर्वंश त्याग। बाबा बैरागी के बाद बेहद के त्यागी बने जिसके कारण ये संसार से उड़ गए। इसी प्रकार हमें भी अगर घर चलना है वापस, तो हमें भी बाप समान बेहद के त्यागी बनना पड़ेगा। जो बेहद के बैरागी पहले बनना पड़ेगा, जो बेहद के बैरागी होंगे वही बेहद के त्यागी हो सकते हैं। ऐसे भी देखा जाता है, कोई अगर किसी स्थान से सदा के लिए कहीं जाना चाहता है, छोड़ के चला जाना चाहता है, तो पहले उस स्थान के लिए उसका वैराग्य आता है, उस स्थान से वैराग्य हो जाता है। फिर वैराग्य के बाद अभी चलना है तो वहाँ का जो भी कुछ है उसके पास सब त्याग देता है, फिर जाकर वो चल सकता है। ठीक इसी तरह हमें भी अगर इस संसार से सदा के लिए चलना है अभी बाबा समान संपूर्ण वन संपन्न वन उड़ चलना है, तो हमें सबसे तो पहले वैरागी बनना पड़ेगा। लेकिन वैराग के साथ साथ इस संसार का सब कुछ त्याग करना पड़ेगा, सब कुछ त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम घर चलेंगे साथ में कुछ जाने वाला नहीं है। ये देह, देह की दुनिया की सब कुछ यहाँ ही रह जाएगा, यहाँ ही रह जाएगा, कुछ साथ में चलेगा ही नहीं। जब मर जाएंगे अपना सब कुछ यहाँ ही रह जाता है, कुछ साथ नहीं चलता है। और जब हम वापिस चलेंगे, घर चलेंगे, उसके लिए तो खाली आत्मा ही जाएगी। ये शरीर, ये देह की दुनिया सब कुछ यहाँ ही छोड़ना पड़ेगा। इसलिए हमें संपूर्ण त्याग चाहिए, संपूर्ण त्याग करना पड़ेगा तो ही घर चल पड़ेंगे। त्याग वास्तव में कोई भी चीज़ का छोड़ना, उससे ममत्व तो मिटा देना, उसको त्याग कहते हैं। और जिसके लिए वो त्याग किया जाता है फिर उसमें अपनापन नहीं रहता है। फिर जिसके लिए त्याग कर दिया उसका हो गया, वो उसमें कोई अपनापन नहीं रहता है, उसके लिए संकल्प ही नहीं उठता है। परंतु त्याग की परिभाषा बड़ी गुह्य है। त्याग तो दुनिया में बहुत लोग करते हैं, हम दुनिया में बहुत लोगों को, त्यागी लोगों को देखते हैं। सन्यासी भी त्याग करते हैं, अपना घर बार मित्र संबंध त्याग करके चले जाते हैं। लेकिन दुनिया का जो त्याग है, दुनिया में जो करते हैं, वो सब हद का त्याग है। लेकिन वापिस घर चलने के लिए हमें बेहद का त्याग करना पड़ेगा, बेहद का त्यागी बनना पड़ेगा। जब सन्यासी कोई अपना घर बार छोड़ देता है तो सब कुछ भूल जाता है, अपना घर, अपना मित्र संबंधी, सब रिश्तेदार, सबको भूलता है, अब चला जाता है। अगर फिर वो वापिस आ जाता है तो उसको अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक इसी तरह हमें भी इस संसार को संपूर्ण रीति से त्यागना पड़ेगा तो ही घर चलेंगे। और त्यागना माना एक छोटी चीज़ के लिए भी ममत्व ना रहे। कोई अपना घर छोड़ दिया, अपने संबंधी छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, लेकिन घर का एक छोटा सा सामान के लिए उसको अगर ममत्व रह गया तो उसको त्याग थोड़ी माना जाएगा। इसी प्रकार ये संसार का सब कुछ त्याग करना पड़ेगा। देह और देह की दुनिया, तन मन धन जन सब कुछ त्यागना पड़ेगा तो ही हम घर चलेंगे। तैयार हैं सभी? वास्तव में सोचते होंगे कि सब कुछ कैसे छोड़ें। वास्तव में त्याग की परिभाषा बहुत गुह्य है जो बाबा ने हमें समझाया है। इसको अगर विस्तार रूप में हम समझें तो हमारे सामने बाबा तो रोल मॉडल है। बाबा भी तो त्याग करके गए, बाबा को फॉलो करना पड़ेगा, बस अनुकरण करना पड़ेगा। तो चलिए हम चर्चा करते हैं कि वास्तव में वो बेहद का त्याग क्या है, देह और देह के संबंधों का त्याग। देह का त्याग माना इस शरीर को छोड़ना नहीं है। शरीर छोड़ दिया तो फिर मर गए, तो फिर क्या करेंगे? आत्मा शरीर के बिना कुछ भी नहीं कर सकती है। देह को नहीं छोड़ना है। देह का त्याग माना देह भान का त्याग, देह अभिमान का त्याग। देह भान और देह अभिमान दोनों में अंतर है। देह भान क्या होता है? जैसे कोई सोचता है मैं मेल हूँ, मैं फीमेल हूँ, मैं युवा हूँ, मैं बुजुर्ग हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं गोरा हूँ, ये सब देह भान है। लेकिन एक होता है देह अभिमान। देह अभिमान क्या है? फिर अपनी विशेषता, अपनी पोजीशन, इसका फिर जो नशा, जो अहंकार, जैसे मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं योगी हूँ, मैं बड़ा हूँ, मेरी बात को नहीं सुनता है, ये मेरी विशेषता है, मेरे जैसा कोई कर नहीं सकता है, ये सब अभिमान, अहंकार। तो देह को छोड़ना माना ये देह भान को छोड़ना और देह का अभिमान को छोड़ना, यह है गुह्य परिभाषा। देह भान को और देह अभिमान को कैसे छोड़ें? क्योंकि बाबा कहते हैं ये जड़ है सभी विकारों का। जब तक आप देह अभिमान और देह भान को नहीं छोड़ते हो, आप विकारों से मुक्त नहीं हो सकते हो। ये संसार से मुक्ति नहीं होगी, आप घर उड़ नहीं जा सकते हो, क्योंकि देह को साथ में लेके तो चलना नहीं है, रहना भी है, संसार में रहना भी है, देह को संभालना भी है, देह को खिलाना पिलाना भी है, इसको मालिश पालिश भी करना है, और इसके साथ पुरुषार्थ कर, तपस्या कर, सेवा कर, संपूर्ण वन उड़ जाना है। ये मोस्ट डिफिकल्ट है। ब्राह्मणों के लिए अपने मित्र संबंधी घर बार छोड़ करके चले जाना, वो तो हद के सन्यासी भी करते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। हम बाबा के बच्चों के लिए, ब्राह्मणों के लिए, ये देह भान का त्याग है सबसे बड़ा त्याग। जो इस त्याग में पास हो गया उसके लिए बाकी सब सहज है। तो देह भान का त्याग कैसे करें, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? देह को, देह के साथ चलना भी है, देह को खिलाना पिलाना भी है, इसको स्वस्थ रखना भी है, क्योंकि ये देह बहुत मूल्यवान है। देह ठीक नहीं है तो पुरुषार्थ भी नहीं किया जा सकता है, सेवा भी नहीं किया जा सकता है, योग भी लगेगा नहीं। और बाबा का तो ये महावाक्य भी है, बच्चे अगर तुमको ये देह को चलाना नहीं आता है, तुम भविष्य में राज्य क्या चलाओगे? तो ये देह को चलाना भी है, लेकिन इससे ममत्व मिटाना भी है। कैसे? इसके लिए बाबा हमें युक्ति बताते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा हमेशा क्या करते थे? बाबा कहते थे ये मेरा देह ये अमानत है। ऐसे भी भक्ति में हम सभी क्या कहते थे? हे प्रभु, ये तन मन धन सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण किया लागे मेरा, कहते थे ना। लेकिन वो तो तोता जैसा खाली रट के हम बोलते थे, सचमुच दिया तो नहीं था। यहाँ प्रैक्टिकली करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, तभी तो संपूर्ण बनेंगे। तो बाबा कहते हैं ये शरीर तुम्हारा नहीं है, ये आप मुझे अर्पण कर दिए हो, तो ये मैं तुमको फिर से वापिस देता हूँ, तुम इसको प्रभु की अमानत समझ करके संभालो। जैसे कोई चीज़ कोई देता है तो हम उसको संभालते हैं, तो उसमें अपना ममत्व नहीं होता है, लेकिन उसको अच्छी तरह से संभालना भी पड़ता है। इसी प्रकार ये शरीर को अगर अमानत समझेंगे, ये प्रभु की अमानत है, बाबा ने ये मुझे दिया है शरीर को सेवा अर्थ, और कोई काम के लिए नहीं। ये संसार में ये शरीर को सेवा अर्थ लगाने के लिए बाबा ने ये दिया है, ये एक साधन है, बस ऐसे समझ के चलना है। दूसरी बात, बाबा कहते हैं बच्चे ये शरीर को एक मंदिर समझो, ये एक चैतन्य मंदिर है, मैं आत्मा इसमें विराजमान चैतन्य मूर्ति हूँ, और स्वयं ट्रस्टी बनकर ये शरीर रूपी मंदिर को मैं संभाल रहा हूँ। जैसे मंदिर का पुजारी मंदिर का पूरा देखभाल करता है, लेकिन मंदिर मेरा है नहीं समझता है, वो सर्वसाधारण है, सभी आते हैं मंदिर में। तो ये शरीर भी ये एक चैतन्य मंदिर है, मैं ट्रस्टी हूँ, इसको संभाल रहा हूँ, इस भावना से चलना पड़ेगा। ब्रह्मा बाबा क्या करते थे? ब्रह्मा बाबा कहते थे ये बाबा का रथ है, ये बाबा का रथ है, ये हुसैन का घोड़ा है। बाबा अपना शरीर का बहुत ध्यान रखते थे, बाबा रोज व्यायाम करते थे, एक्सरसाइज करते थे, अपना शरीर का मालिश करते थे। इस शरीर को देखो, शिव बाबा ने भी ब्रह्मा बाबा का रथ क्यों लिया, ब्रह्मा बाबा का शरीर को क्यों चुना? बाबा 6 फुट हाइट का थे, बाबा 90 साल तक भी बिना आधार स्ट्रेट बैठ जाते थे, एकदम बिल्कुल 4-4 घंटा बैठ जाते थे। आजकल 50 साल भी उम्र नहीं है, कमर टेढ़ी हो जाती है, बैठ नहीं पाते हैं, इस इधर उधर होते रहते हैं, लेकिन बाबा बिल्कुल एकदम स्ट्रेट एंड इरेक्ट, कभी भी बाबा एक कोई डंडा भी नहीं पकड़े। बाबा चश्मा तक भी नहीं पहने थे अंत तक। बाबा का रथ ऐसा था, ऐसा शरीर था, बाबा उसको खूब संभाल के भी रखे थे, लेकिन खूब पुरुषार्थ किए। तो ऐसे ही इस शरीर को बाबा ने कहा मैं अकेला रथ थोड़ी दिया हूँ, आपका भी शरीर भी तो बाबा का रथ है, बाबा आपका शरीर द्वारा भी तो सेवा करा रहे हैं। तो ये शरीर को अमानत समझना है, चैतन्य मंदिर समझना है, और रथ समझना है, बाबा का रथ है, तभी हम देहभान से मुक्त हो सकते हैं। और सदा देही अभिमानी का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मैं इस शरीर में विराजमान, मैं एक आत्मा हूँ, एक चेतना शक्ति हूँ। ये शरीर तो एक जड़ चीज़ है, प्रकृति के 5 तत्वों का एक पुतला है, हड्डी मांस का पुतला, मैं आत्मा इसका मास्टर हूँ, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति तो मैं आत्मा हूँ, ये देह में मैं आत्मा देही हूँ, ऐसे समझकर चलना होगा, जिसको बाबा कहते हैं देही अभिमानी स्थिति। इसका जितना निरंतर अभ्यास करेंगे उतना देहवान छूटता जाएगा। और क्या विधि बाबा बताते हैं? बाबा कहते हैं बहुत सुंदर बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे सोमान में रहो कि मैं ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हूँ, मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ, चोटी हूँ, परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना हूँ, मैं पांडव हूँ, मैं शिव शक्ति हूँ, मैं एक फरिश्ता हूँ। बहुत सुंदर ऊंचे ऊंचे सोमान में रहेंगे तो देहभान छूट जाएगा। और बाबा क्या कहते हैं? मेरे बच्चे ये शरीर तुम्हारा पुराना घर है, ये 84वां जन्म लेते लेते देखो पूरा लास्ट में 84वां जन्म का ये शरीर है, तो ये शरीर बिल्कुल पुराना है, पुराना घर है। अब तुम्हें एक नया घर लेना है। सत्युग में हमको जो चोला मिलेगा बाबा कहते हैं वो तुम्हारा नया घर होगा। तो बाबा हमें इस ब्राह्मण जीवन में भी हमें एक संपूर्ण ब्राह्मण स्थिति जब होगी तब हम सभी फरिश्ता बन जाएंगे। जो फरिश्ता का चोला है बिल्कुल एकदम प्रकाश की काया में एकदम चमकता हुआ चमकीला ड्रेस बाबा कहते हैं। तो बाबा कहते हैं अपना संपूर्ण फरिश्ता रूपी घर या जो भविष्य का देवता रूपी घर को याद करो, ये पुराना घर को भूलो। तो देह पुराना है, इस कलियुगी दुनिया में सबका घर पुराना है, ये शरीर पुराना है। तो अगर हम भविष्य का जो श्रेष्ठ घर हमारा बहुत सुंदर है, असली घर है, जो फरिश्ता व देवतापन का शरीर है, उसको बार बार याद करेंगे, अभी चलना है, ऐसा स्वरूप धारण करना है, तो ये देहभान मिट जाएगा। तो बाबा हमें बहुत सुंदर सुंदर युक्ति बताते हैं, ये युक्ति को जितना जो प्रैक्टिकल अपनाएगा ऑटोमेटिकली देहभान से मुक्त हो जाएगा, जो करेगा सो पाएगा। तो सारा दिन अभ्यास करें, उठते ही अभ्यास करें कि उठते ही मैं आत्मा इस शरीर में अवतरित हूँ, मैं एक अवतरित आत्मा हूँ, ये शरीर मेरा एक चैतन्य मंदिर है, ये बाबा की अमानत है, बाबा ने मुझे सेवा अर्थ दिया है। तो सवेरे उठते ही इसका अभ्यास करें। जब हम योग अभ्यास करते हैं उस समय में भी मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, भ्रुकुटि के बीच में एक चमकता हुआ दिव्य सितारा हूँ, मैं मास्टर हूँ, सारे कर्म इंद्रियों का मालिक हूँ, देह का मालिक हूँ, ऐसे समान में रहकर अनुभव करना पड़ेगा। सारा दिन चलते फिरते भी यही स्मृति रहे, ऊंचे समान में रहें, और ये देह बाबा ने दिया है एक साधन सेवार्थ, इस स्मृति में रहते रहते हम देहभान को भी, देह अभिमान को, और जो मेरी विशेषता है, जो भी मेरे गुण है, जो भी विशेषता है, ये प्रभु प्रसाद है, ये मेरी नहीं है। जब से बाबा के पास आया, ज्ञान कहाँ था, समझ कहाँ थी, कहाँ कौन से दैवी गुण थे हमारे अंदर, कौन सी ईश्वरीय शक्तियाँ थी, कौन सी विशेषता थी, ये सब प्रभु प्रसाद है, मेरी नहीं है, ये बाबा का दिया हुआ ये खजाना है, ये दूसरों की सेवा के लिए लगाने के लिए ये मेरे लिए उपहार है। तो मेरी विशेषता नहीं, ये बाबा की देन है, प्रभु प्रसाद है, समझकर चलेंगे तो देह अभिमान देहभान से मुक्त हो जाएंगे। दूसरी बात है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है देह के संबंधों का त्याग, देह के संबंधों का त्याग। इसमें दो बातें आती है, देह का संबंध, सबसे पहला संबंध तो देह के कर्मेंद्रियों से है, हमारे देह के जो कर्मेंद्रियां हैं, ये कर्मेंद्रियों से हमारा संबंध है, आँख द्वारा देखते हैं, कान द्वारा सुनते हैं, मुख द्वारा बोलते हैं, हाथों द्वारा काम करते हैं, ये कर्मेंद्रियों से तो नित्य हमें कार्य करना ही पड़ता है, हमारा देह का पहला संबंध यही कर्मेंद्रियाँ है। तो हम कर्मेंद्रियों से काम नहीं करें ऐसा तो हो नहीं सकता है, लेकिन बाबा कहते हैं कर्मेंद्रियों का त्याग नहीं करना है, जैसे देह का त्याग माने शरीर छोड़ के मर जाना, उसको देह त्याग नहीं कहा जाता, देह भान का त्याग, इसी प्रकार कर्मेंद्रियों का त्याग माना कर्मेंद्रियों की अधीनता का त्याग। आज कोई भी व्यक्ति हो अपने कर्मेंद्रियों का गुलाम है, ये कलयुग में कोई भी मनुष्य स्वराज्य अधिकारी कर्मेंद्रजित नहीं है, जो कर्मेंद्रजित बन गया वो जगतचित बन जाएगा। तो कर्मेंद्रिय की अधीनता पर विजय प्राप्त करना है, आंखें हमें कभी धोखा न दे, मुख हमें कभी जो नहीं बोलना चाहिए नहीं बोलें, जितना बोलना चाहिए बोलें, जो नहीं सुनना चाहिए नहीं सुने, तो सारे कर्मेंद्रियों को अपने अधीन में रखना पड़ेगा, तब कहेंगे कर्मेंद्रियों की गुलामी से, अधीनता से मुक्त, त्याग। दूसरी बात है हमारे देह के संबंधी, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, जो अपना लौकिक संबंध को छोड़कर बाबा की यज्ञ में समर्पित हो जाते हैं, वो लौकिक संबंध तो छूट जाता है, वो सहज भी है, लेकिन बाबा के घर में आने के बाद एक नई दुनिया शुरू हो जाती है, एक अलौकिक संबंध जुड़ जाता है सबके साथ, ये भी एक जाल रूप बन जाता है अगर यथार्थ संबंध नहीं निभाते हैं तो। तो दोनों संबंध को त्याग करना पड़ेगा, दोनों संबंध का क्या त्याग करना पड़ेगा, बाबा कहते हैं किसी के साथ भी इस संसार में किसी के साथ भी अगर लगाव है, झुकाव है, तो आप उड़ नहीं सकते हो। जब तक एक बाबा से सच्चा प्रेम नहीं है, संपूर्ण प्रीत नहीं है और हमारी प्रीत और किसी देहधारी में बंट गई है तो हम इस संसार से उड़ नहीं सकते। तो कोई भी लगाव झुकाव नहीं चाहिए, कोई कितने भी विशेषता वाला हो वो विशेषता किसका है? विशेषता वास्तव में वो प्रभु प्रसाद है जैसे बताया। तो कोई भी व्यक्ति कितना भी गुणवान कितना भी सुंदर कुछ भी हो, कुछ भी हमें आकर्षित ना करे, ना प्रभावित हो ना आकर्षित हो, कहीं भी लगाव झुकाव नहीं। अगर लगाव झुकाव है बुद्धि बार बार उधर जाएगी, उनके संबंध में भी रहें, सेवा साथी होकर रहें, सहयोगी बने, सहयोग लें समय अनुसार अगर जरूरत है तो, लेकिन बुद्धि से उपराम। मेरा तो एक शिवाबा दुसना ना कोई, मेरा सर्व संबंधी एक बाबा है, बाबा से सर्व रिश्ता जोड़ दिया फिर दुनिया से कोई रिश्ता नहीं, तब हम फरिश्ता बनेंगे। फरिश्ता अर्थात एक ही रिश्ता एक ही रास्ता, वो है फरिश्ता। सर्व रिश्ता एक बाबा के साथ है तब कहेंगे फरिश्ता। तो किसी से भी लगाव झुकाव नहीं। दूसरी बात, अगर पुरुषार्थी जीवन में कभी कभी देखा जाता है, लगाव झुकाव तो नहीं होता है लेकिन कोई पुरुषार्थ में हमसे आगे चला जाता है तो ईर्ष्या भाव जागृत हो जाता है, और कोई अगर श्रीमत पर नहीं चल रहा है, कोई उससे कोई कमी कमजोरी देखते हैं तो उनके प्रति घृणा भाव पैदा हो जाता है। तो घृणा भाव पैदा होना, ईर्ष्या भाव रखना, नफरत रखना, ये भी एक बहुत बड़ा कर्म बंधन है जो हमें उड़ने नहीं देंगे। इसलिए बाबा कहते हैं ना किसी से लगाव ना किसी से घृणा भाव, दोनों से उपराम, तब कहेंगे बेहद के वैरागी बेहद के त्यागी। एक ही वृत्ति रहे रहम भाव, ना लगाव ना झुकाव ना घृणा भाव ना ईर्ष्या भाव, एक ही भाव है रहम भाव, तभी हम कर्मेंद्रियों का वास्तव में मालिक बन सकते हैं, कर्मेंद्रियजीत बन सकते हैं। तो देह के संबंध और कर्मेंद्रियों की अधीनता का त्याग, ये दोनों का त्याग, ये भी गुह्य है, इसका आगे चर्चा करेंगे डिटेल। तो आज हम अभ्यास करेंगे देह भान और देह अभिमान का त्याग, ये बहुत मुख्य है। ये आदि से अंत तक ये पाठ बाबा हमें पढ़ाते रहते हैं, मैं आत्मा हूँ मैं आत्मा हूँ, यही पक्का नहीं होता है। जो इस पढ़ाई में पास हो गया, इस पहला पाठ में पास हो गया, वो पास ही है। तो इसको हम पक्का करें, फिर हम आगे सुनते हैं कर्मेंद्रियों की अधीनता से और लौकिक अलौकिक संबंधों का कैसे त्याग करें। ओके, ओम शांति।